हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की क्रांतिकारी परियोजना रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम है वर्णाश्रम फार्म कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। ऐसे तो कम उम्र के लोग मैं भक्ति में देखता हूँ तो मेरा उत्साह बहुत बढ़ता है कि इतना कम उम्र में आपको भक्ति मिला, कृष्ण भक्ति नहीं तस्यव हेतो प्रयते तकोविदा, मतलब तीनों लोकों में नहीं मिलने वाला जो वस्तु है आप लोगों को मिल गया इतना कम उम्र में। अभी 20 से 25 साल के उम्र के लोग हैं ज़्यादा, ये तो अनेक जन्मों में कई किया हुआ सुकृति है उसके अनुसार इतना कम उम्र में मिला, हमें तो 30-35 के बाद मिला, तो आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसे तो कृष्ण भक्ति के लिए बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय हैं, ऐसे हम देखेंगे बहुत सारे अपसंप्रदाय भी हैं वृंदावन में देखेंगे ऐसा, मगर इस्कॉन जैसा संस्था जिस प्रकार से राधा कृष्ण का जो भक्ति हमें दे रहे हैं गौड़ीय मध्व गौड़ीय संप्रदाय में, इसमें भी मिलना, ये संस्था हमें मिलना और भाग्यशाली हैं हम लोग। और बाकी जगह पे इतना स्टैंडर्ड्स कहाँ हैं, इस प्रकार का स्टैंडर्ड्स नहीं है। आज जो भी मैं इस प्रकल्प के बारे में बताऊंगा वर्णाश्रम फार्म कम्युनिटीज के बारे में, इसमें कुछ वाक्य कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं कठोर हो सकते हैं सुनने के लिए, तो मैं कठोरता ही से सुनाऊंगा तो आपको विचलित नहीं होना है, क्योंकि मैंने सुना, मेरे गुरु महाराज से सुना, मेरे मतलब श्रील प्रभुपाद से, हमने लेक्चर्स के माध्यम से उनके अलग अलग कन्वर्जेशंस है और बुक्स के माध्यम से जो जाना और सविसाज प्रभु है और ऐसा उन्नत भक्तों से जो भी जाना, तो वही मैं आपको सुनाऊंगा। थोड़ा सा उसमें थोड़ा चेंजेस हो सकता है, मतलब वही मैं बताऊंगा, उसी के लिए कठोरता हो सकता है कुछ शब्दों में, मगर विचलित नहीं होने का, ये हमारा इस्कॉन का मेन यही है ना। हम लोग जब शुरुआत में आते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि चाय छोड़ना होता है, और धीरे धीरे पता लगता है अरे प्याज लहसुन भी छोड़ना है, बाहर का खाना छोड़ना है, ऐसे धीरे धीरे सभी छूटते हैं ना एक एक चीज। अभी पैंट शर्ट छूट गया मतलब कुछ समय के लिए, आप तो जब वापस जाएंगे तो वापस पहनेंगे अलग बात है। तो ये हमारा जो संप्रदाय यही है, एक एक छोड़ना है हमें और आगे भक्ति में प्रगति करने के लिए। ऐसा तो हम इनका वृत्तांत सभी ने सुना होगा, अजामिल का वृत्तांत। तो अजामिल के केस में क्या हुआ, अंत समय में जब नारायण नारायण बुलाया वहां पे विष्णुदूत आए थे और उसी समय यमदूत भी आए थे, और कुछ महाभारत ऐसे ग्रंथों में कुछ जगह पे ऐसा भी है कि देवदूत भी आते हैं ऐसा। तो मृत्यु के समय में तीन लोग आ सकते हैं हमें यहां से ले जाने के लिए, एक विष्णुदूत हुए, देवदूत हुए और यमदूत हुए। देवदूत ले जाएंगे हमें स्वर्ग के लोकों में ले जाएंगे, और यमदूत आएंगे तो हमें यमलोक को ले जाएंगे, विष्णुदूत आएंगे तो हमें वैकुंठ ले जाएंगे, ये हम सभी जानते हैं नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि इससे पहले मैं कितने भी जन्म लिया, मनुष्य जन्म जब भी लिया, मेरे आंगों का दर्शन तो विष्णुदूत का नहीं हुआ, नहीं होते तो मैं आज के यहां पे नहीं होता, आप लोगों का भी नहीं हुआ, नहीं आप यहां पे नहीं होते। तो हमारा ज्यादातर दर्शन किनका हुआ, यमदूत या देवदूत का हुआ, तभी तो हम यहां पे हैं। तो इस जन्म में हम कहां पे हैं, कहां से आगे कैसे प्रगति करना है, हमें अच्छी तरह सभी भागवत जैसे ग्रंथों में उपलब्ध है हमारा पूरा जानकारी इस चीज का। इसमें हम देखेंगे भागवतम में प्रहलाद महाराज की जो चरित्र हम सभी पढ़े होंगे सातवें स्कंद का, उसमें जब हिरण्यकश्यपु का वध कर चुके थे नरसिंहदेव, तो उनका जो स्वरूप था बहुत ही उग्र रूप था, उसी के लिए उग्र नरसिंह बोलते हैं, नहीं बहुत ही उग्र रूप था, सभी वहां पे देवी देवता स्थित थे मगर कोई भी हिम्मत नहीं कर रहे हैं उनको शांत करने के लिए, उनका रूप ही ऐसा है पास में नहीं जा पा रहे। तो सभी जो देवी देवता हैं लक्ष्मी देवी के पास जाते हैं, लक्ष्मी देवी को स्तुति करते हैं, आप जाके आपका स्वामी को शांत करिए। तो लक्ष्मी देवी बोलते हैं मैं भी ऐसा रूप मेरा स्वामी का कभी नहीं देखा हूं, मैं भी नहीं जा सकता हूं, ऐसा लक्ष्मी देवी बोलती। तब सभी किसके पास जाते हैं, प्रहलाद है ना, प्रहलाद जो नाम है देखेंगे संस्कृत में दो शब्दों से बना है, प्र आह्लाद, प्रकृष्ट रूपेण आह्लाद, मतलब एक विशेष रूप का आह्लाद, हमेशा आनंदमय जीवन है क्योंकि विष्णु का हमेशा स्मरण करते हैं ना, 5 साल का जो बालक है। ऐसे तो कुछ पुराणों में ऐसा भी है, नरसिंह देव को जब शांत किया प्रहलाद महाराज, तो एक तो श्रीमद भागवत में भी आता है क्योंकि नरसिंह अवतार है ना, एक सिंह है, तो प्रहलाद को छाटते हैं नहीं भगवान, क्योंकि एक लाइन होता है जो सिंह होता है उनके बच्चों को छाटता है, प्रेम दिखाना है तो किस प्रकार से उनका प्रेम दिखाया है प्रहलाद के ऊपर, तो छाटा मतलब बहुत ही प्रेम करता है तभी तो ना। और कुछ पुराण में ऐसा भी लिखा है प्रहलाद महाराज को कैसा उन्होंने अपने गोद में बिठा के, कैसे कभी कभी बच्चों को कैसे बिठाते हैं गोद में, दोनों टांग को इधर करके बच्चों को ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाते हैं नहीं बच्चों को, तो नरसिंहदेव जो है प्रहलाद महाराज को ऐसे बिठा के तो इस प्रकार से थोड़ा सा हिलाया, मतलब क्या उन्नत स्थिति हो सकता है प्रहलाद महाराज का, नहीं कितना प्रकार के भक्त हो सकते हैं वो, नहीं तो भगवान जो है ये सभी लोगों का जो सृष्टि करता है एक, उसी के लिए भगवान को भक्त वत्सला बोला है। भक्त वत्सला मतलब वत्स का जो मीनिंग है संस्कृत में हम देखेंगे, एक बच्चे को भी वत्स बोलते हैं पुत्र वत्स, दूसरा एक बछड़ा जो होता है ना गाय का बछड़ा उसको भी वत्स बोलते हैं। स्पेशली विष्णु या कृष्ण को ही भक्त वत्सला क्यों बताया, क्योंकि आपको गाय का अनुभव कितना है पता नहीं है, एक गाय से उनके बछड़े को दूर करेंगे थोड़ा सा भी वो गाय इतना गुस्सा हो जाता है तो उसका रस्सी उससे तभी तोड़ के भी अपने ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि वो बच्चे के लिए उतना प्रेम है। तो यहां पे क्या है वो वत्स कौन है, एक भक्त को एक वत्स के रूप में बताया, मतलब एक बछड़े के रूप में, और भगवान एक गाय के रूप में, मतलब एक बच्चे के लिए भगवान किस प्रकार से बचाने के लिए आते हैं, वो गजेंद्र मोक्ष में भी हमने देखा है ना, गजेंद्र मोक्ष में कैसे भगवान बचाने के आए हैं गजेंद्र को। तो यहां पे भी क्या हुआ, जब प्रहलाद महाराज गए नरसिंह देव को शांत करने के लिए, जो प्रहलाद महाराज के कुछ प्रेयर्स है उसमें एक प्रेयर ऐसा है, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि नरसिंह देव आपके ये जो उग्र रूप देख के मैं डर नहीं रहा हूं, मैं इस देख के डर रहा हूं कि ये जो भौतिक जगत में सभी लोग हैं इतना दुखी है उनके जो अवस्था देख के मेरे को डर लगता है, आपके ये जो रूप को सभी देख के डर रहे थे वो रूप को डर नहीं रहे हैं प्रहलाद महाराज, तो हम लोगों का जो स्थिति को देख के वो डर रहे हैं। एक्चुअली इस्कॉन का मेन फाउंडेशन जो प्रिंसिपल है ये इसी पे आधारित है, किस प्रकार के प्रहलाद महाराज की जो भावना है लोगों को कैसे बचाना है, जो पश्यन अपि पश्यति देखते हुए नहीं देख रहे हैं, अंधा यथांधैरु पयनीयमानः, मतलब एक अंधा दूसरे अंधे को ले जा रहा है तो क्या होगा, दोनों गड्ढे में गिरेंगे नहीं, तो सभी लोग उसी स्थिति में जा रहे हैं, तो हमारे इस्कॉन का मूवमेंट जो है जो बचाना है, इसके लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते हैं कि कोई आदमी डूब रहा है पानी में तो उसको बचाना है तो हम तैहर के जाएंगे उसका जो कपड़े बचा के, उसको बचाना नहीं होता ना ऊपर के कपड़े लेके आ गए हम लोग बचाए, नहीं वो आदमी तो डूब जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा हमारी इस्कॉन का भी एक्टिविटीज इसी प्रकार का हो गया है, आदमी जो भी डूबने वाले उसको नहीं बचा रहे उनके कपड़े को बचा, तो बहुत सारे हमारा समाज कार्य है इस प्रकार के एक्टिविटीज में हम लोग लग गए हैं, जो भौतिकवादी नहीं है हमारे इस्कॉन भी ऐसे हो गया, तो वास्तविक में किसी को बचाना है इस भौतिक जगत से भवसागर से बचाना है उसको पकड़ के हमें बिल्कुल अच्छी तरह दिखाना पड़ेगा, जिस प्रकार से आप आई स्पेशलिस्ट के पास कभी गए होंगे, आई स्पेशलिस्ट क्या करता है, मेरे को आंख में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा है, आंख में समस्या है, तो क्या बताएगा, एक डम्मी चश्मा लगाएगा नहीं, लगा के एक लेंस लगाएगा दूसरा लेंस लगाएगा कुछ एडजस्ट करेगा, आगे कुछ अल्फाबेट्स होंगे अलग अलग साइजेस में अलग अलग फॉन्ट साइज में, उसको घुमाएगा यहां से अभी दिख रहा है क्लियरली, और छोटा साइज दिख रहा है अभी दिख रहा है, तो जब तक दिखेगा नहीं आपको एडजस्ट करके बता देगा कौन सा लेंस है आपका, नहीं ना। गुरु का कर्तव्य हमारा इस्कॉन का मुख्य रूप से यही है कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्लियरली दिखाने वाला, ये है लक्ष्य, ये करेंगे तो आपको इस जन्म में ही भगवत धाम जाने का मौका मिल सकता है, भगवान का प्रत्यक्ष रूप में सेवा करने का मौका, ये हमारा मिशन है। तो उसी के लिए श्रीमद् भागवतम में टोटल 10 प्रमेय है, जैसा स्थानम पोषणम ऐसा करके उसमें एक प्रमेय है जिसके बारे में चर्चा हुई है भागवतम में, उसमें एक है निरोध लक्षण। निरोध मतलब स्टॉप एंजॉयिंग, मतलब ये भौतिक जगत को भोगना बंद करो। इसको इस स्थिति तक आना एक जीव के लिए, एक मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन है, इम्पॉसिबल है। मतलब अनेक जन्मों से अलग अलग योनियों में भ्रमण करते करते इस भौतिक जगत को भोगने का जो टेंडेंसी हमारे अंदर आ गया है, उसी की वजह से हम लोग भगवान को नहीं देख सकते हैं। प्रभुपाद अपने पर्पस में लिखते हैं कि भौतिक जगत में जो भी मनुष्य का सृष्टि हुआ है और उस मनुष्य का भी इस आंखों का जो डिजाइन हुआ है, यह डिजाइन भगवान का रूप को देखने के लिए नहीं है। यहां पे भगवान का रूप हम लोग सभी एक पत्थर का मूर्ति देख सकते हैं, एक लकड़े का मूर्ति, एक लोहे का बना हुआ मूर्ति देख सकते हैं, भगवान का रूप का देखने के लिए नहीं, क्योंकि इसके सभी इंद्रिय जो है मुख्य रूप से आंख के बारे में वहां पर प्रभुपाद बोलते हैं कि इसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य छह प्रकार का रिपु है। रिपु मतलब शत्रु है। जब तक ये रहेंगे तो हम भगवान को नहीं देख सकते। इसका मतलब मुख्य रूप से वो काम पहला जो स्टेप है वो, और लास्ट वाला बहुत बड़ा ये जो ईर्ष्या है बहुत बड़ा शत्रु है। ये आसान नहीं है इसको विजय प्राप्त करना हो। उसके लिए प्रभुपाद बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि एक नदी का प्रवाह को रोकना बहुत कठिन है। ये भगवद्गीता में एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद, उदाहरण देते हैं। हमारा जो इंद्रिय का जो वेग है या इसका जो प्रवाह है किसके प्रति, इंद्रिय विषयों के प्रति, वो किस प्रकार का है बता रहे थे। एक नदी का प्रवाह जैसा है, उसको रोकना अत्यंत कठिन है। मगर ये जो नदी का प्रवाह जब समुद्र में जब मिलता है तो उस समय क्या होगा, समुद्र के लहरे के जो प्रभाव के सामने इसका नदी का प्रवाह कुछ भी नहीं होता है। आप देख सकते हैं जो द्वारिका में आप गए होंगे, और छोटा नदी है मगर आप वो तो गोमती नदी बहुत छोटा है, वो भी जब समुद्र में एंटर होता है वहां पे उसका प्रवाह का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि समुद्र के लहर इतना स्ट्रांग होता है। प्रभुपाद बोलते हैं कि इस हमारा साधना का बल इतना तेज होना चाहिए समुद्र के लहर जैसे, तब ये इंद्रियों का जो प्रवाह है उसको आप दबा सकते हैं। मतलब साधना किस स्तर पर होगा तब ये जो हम निरोध लक्षण है, मतलब ये भोगने की जो प्रवृत्ति है अनेक जन्मों से हो चुका है हमारे इंद्रियों को, वो कम हो सकता है। नहीं तो कोई संभावना नहीं इस जन्म में भी हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है। अशुद्ध स्तर में हमारे इंद्रिय हैं, तो उसके लिए एक जीवन हमें इस प्रकार से समर्पित करना पड़ेगा भगवान का सेवा के लिए। जिस प्रकार से आप देखें आजकल सुसाइड बॉम्बर्स है ना, सुसाइड बॉम्बर्स, राजीव गांधी को किसने मारा है ना, क्या नाम है उस लेडी का, किसी को याद है? हाँ, कोई नाम याद नहीं है, जनरल नॉलेज ऐसा। तो आप बहुत बच्चे होंगे उस समय तो नहीं, ज्यादा हम थोड़ा बड़े थे उस समय। जो भी लेडी थी, या अभी रिसेंटली वहां पे हुआ ना जहां पे सुसाइड अटैक हमारा पुलवामा में हुआ है ना, तो वो लोगों को क्या प्रकार का तैयारी किया होगा, उनको किस प्रकार का उनका भक्ति सिखाया होगा ना, देशभक्ति, मतलब हमारा देखो मुल्क का क्या हो गया, इनको मारना है, तो किस प्रकार से तैयार किया होगा, उनको सुनाया होगा ना, उनको बहुत कुछ वो सुना के उनको तैयार किया, वो लोग मरने के लिए तैयार हो गए। नहीं, राजीव गांधी के लिए भी ऐसे किया उसने। वो लेडी थी यहाँ पे बेल्ट में बॉम्ब बांध के जैसे झुकी वहां पे बेल्ट बांध बॉम्ब बटन दबाया उड़ गई वो उसके साथ साथ राजीव गांधी पे। तो किस प्रकार का तैयार करना पड़ेगा मेरे लोगों को। नहीं, मतलब भगवान कृष्ण के लिए हमें भक्ति का जो एक्चुअली श्रवण, इसके लिए बहुत महत्व बताया। ये जो इंद्रिय है ना, प्रभुपाद अपने भागवतम में भगवद्गीता में भी लिखते हैं, यदि कोई व्यक्ति सो रहा है इसको जगाने के लिए, आप सभी सुबह उठते हैं कैसे उठते हैं, अलार्म, मतलब साउंड का वाइब्रेशन। प्रभुपाद बोल रहे हैं एक साउंड का देखो, जो भौतिक रूप से सोया हुआ व्यक्ति जागृत हो जाता है। तो ये जो भगवान का जो संदेश है, ये श्रीमद् भागवतम का जो मैसेज है और भगवान का नाम है, जो सुनेगा जो व्यक्ति सो रहे हैं, एक्चुअली हम लोग सभी जागते हुए अभी दिख रहे हैं, एक्चुअली हम सभी सो रहे हैं, क्योंकि विष्णु का एक नाम है, विष्णु सहस्र नाम है, हजारों नाम है, नहीं
भगवान विष्णु का, उसमें एक नाम है स्वापना। स्वापना मतलब सभी को सुलाने वाला, सभी जीवों को सुलाने वाला। हम सभी एक प्रकार नींद सो रहे हैं, आपका नींद अलग होगा, प्रभु का नींद अलग होगा, हमारा अलग प्रकार का नींद है। अभी भी हमें भौतिक वस्तुओं में एक रस जो मिल रहा है, इसका मतलब वो हमारा ये नींद होने की वजह से, हमें जागृत अवस्था में नहीं, पूर्ण रूप से जागृत अवस्था नहीं, मैं आत्मा हूं। यहां पे भौतिक जो भी वस्तु में कभी भी थोड़ा सा भी रुचि आ रहा है, किसी में भी टेस्ट आ रहा है, इसका मतलब अभी भी हम लोग सो रहे हैं एक प्रकार का। तो इसको जागृत होने के लिए एक जीवन में इस प्रकार का हमारा साधना होगा तो तब हम रियलिटी समझ सकते हैं। उसके लिए क्या है कि फुल टाइम भगवान का सेवा एक जीवन में तो जरूरी, ये तो आप ले एक्चुअली इस्कॉन का मूवमेंट ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन, प्रभुपाद के टाइम में उनका जो भी प्रवचन, सभी चीज देख लीजिए, ओवरऑल थोड़ा डीपली स्टडी कीजिए, एक्चुअली प्रॉपरली क्लोजली आप देखेंगे ना इसको, सारी चीज को। इस्कॉन का मूवमेंट फुल टाइम भगवान का सेवा में लोगों को एंगेज करने का है। ये शुरुआत में कोई समझेगा नहीं इस चीज को, और ऐसे नहीं कि आप सभी लोग इसके लिए तैयार होंगे, ये क्या बोल रहे हैं। मैं भी ऐसे था, मैं ऐसा कंपनी के साथ जॉब कर रहा हूं, मैं आप लोग सोच नहीं सकते क्या फैसिलिटीज हमारे कंपनी को मिल रहा था। मैं वो 5 साल पहले जॉब छोड़ा मैंने, आप यकीन नहीं कर सकते उसे जॉब छोड़ के मैं ऐसा फुल टाइम आ सकता। मैं कभी कुछ लोग बोला भी इस्कॉन के साथ जुड़ा, अरे ये तो जॉब वॉब छोड़ देगा, ये सब कुछ जाएगा ये, तो उस समय क्या ऐसे थोड़ी होता है भक्ति, जॉब वॉब छोड़ के, जॉब के साथ साथ सब चीज हो सकता है। एक्चुअली इस्कॉन का रियल मोमेंट यही है, सभी को फुल टाइम भगवान की सेवा में लगाना है, तब कुछ संभावना है, कुछ तो संभावना है उसका। सभी इंद्रिय जो है अभी भौतिक स्थिति में है वो आध्यात्मिक हो सकता है, अभी ट्रांसेंडेंटल हमारा सेंसेस नहीं है, दिव्य इंद्रिय नहीं है, अभी भौतिक इंद्रिय है, भौतिक। अभी इसके लिए प्रभुपाद बहुत अच्छा उदाहरण बताते हैं कि ये बहुत बार सुना होगा, एक बगला एक कीचड़ में मछली के लिए इंतजार कर रहा है, तो ऊपर से एक हंस जा रहा था, जा रही थी, क्या है, जा रही थी या जा रहा था, जा रहा था, ओके। तो वो सोचा कि इसका कुछ उद्धार करना चाहिए, तो वो जैसा नीचे आके कहती है कि बगले को मानसरोवर चलना है, तो बगला बोलते हैं वहां पे कीचड़ मिलेगा। तो हम लोगों को ये जो इस्कॉन का जो मेन मूवमेंट है, सभी को मानसरोवर जैसा स्थिति तक पहुंचाना है, मगर हम अभी भी उसी स्थिति में हैं कि भौतिक स्थिति में है। हर जगह पे हम भोग को ढूंढने का प्रवृत्ति हमारे इंद्रियों में हो गया है, तो हम बहुत आगे स्थिति तक पहुंचाना है, तो एक जीवन में इस प्रकार का हमारा जीवन होना चाहिए, फुल टाइम भगवान की सेवा। एक ऐसे कि इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, एक तो फुल टाइम ब्रह्मचारी बन सकते हैं, इसमें तो बहुत सारे जन्मों का साधना के अनुसार ये चीज मिल सकता है। मतलब ये जो सबसे बड़ा भौतिक दुख सुख बताया गया है वो है मैथुन सुख, सेक्स जो स्त्री का जो सुख है वो तो सबसे हाईएस्ट बताया, मेटीरियल हैप्पीनेस, उसको पार करना मतलब बहुत कठिन है, मगर जो इतने जन्मों का साधना है वो लोग कुछ ट्राई कर सकते हैं, सभी लोग संभव नहीं। यदि गृहस्थ भी बन गए तब भी आप फुल टाइम भक्ति कर सकते हैं, वो उसके लिए ऑप्शंस हम देखेंगे। एक तो फुल टाइम एक कोई टेंपल के अंडर कोई सेवा करना, दूसरा है प्रकल्प वर्णाश्रम फार्म कम्युनिटी। प्रभुपाद वापस चाहते थे जो भगवान के समय में किस प्रकार का सृष्टि मतलब था, किस प्रकार का यहाँ पे जीवन था, वो जीवन को वापस लाना चाहते थे, कृष्णा सेंटर्ड वृंदावन विलेज बनाना चाहते थे। तो उसके लिए वापस भगवान ने जो सिस्टम दिया है उसके अनुसार हमारा जीवन को डालना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बाहर के दुनिया के अनुसार। अभी क्या हो गया, जब से ब्रिटिशर्स आए उन्होंने अर्थव्यवस्था हमारा पूरा बदल दिया, उसके अनुसार हमने अपने जीवन को डाल दिया, उसके बाद इस्कॉन में हम जोड़े और उसी के साथ से हम चला रहे हैं। थोड़ा बहुत भक्ति कैसे भी क्रश करना, हमारा जो राउंड है खत्म करना, थोड़ा बहुत पढ़ना और सैटरडे संडे मिलना, बस इसी के साथ चल रहा है, कोई बहुत ज्यादा प्रगति नहीं है भक्ति में, देखेंगे सिटी में बहुत ज्यादा नहीं है। तो उसके लिए एक व्यवस्थित चाहिए व्यवस्था, वो है वर्णाश्रम फार्म कम्युनिटीज। भगवान ने किस प्रकार से बताया है जीवन यापन करना, किस व्यक्ति का जो स्वभाव होगा उसके हिसाब से उसका कर्म करेगा, वो भक्ति के लिए बहुत अनुकूल होगा, बहुत जल्दी प्रगति कर सकता है। तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में भक्ति विनोद ठाकुर के समय में ये सारा रिवोल्यूशन चल रहा था, क्योंकि जब से उसी समय ब्रिटिशर्स आए थे, पूरा सिस्टम को बिगाड़ दिया उन्होंने, वर्णाश्रम सिस्टम जो भी है सभी वृत्ति को खत्म कर दिया। उन्होंने इंग्लैंड से बहुत सारे फैक्ट्रीज लाए थे, मिल मेड कपड़ा, तो जो भी लोग कपड़ा बनाते थे उनके अंगूठे काट देते थे, टांग काट देते, ताकि हमारा मिल के कपड़े बिके। तो वहां से सिस्टम बदल गया। पहले क्या है, कृषि गोरक्षा आधारित सभी का जीवन होता था, कोई भी हो उनका मुख्य रूप से जो भी अन्न है सभी चाहिए, वो कृषि गोरक्षा से पूरा हो जाता था। मगर वो सिस्टम जो है पूरा बदल दिया उन्होंने, अभी क्रूड ऑयल सभ्यता दे दिया, अभी कच्चा तेल उसी पे निर्भर है पूरा। आपका देखिए अभी जो भी हमारा सभ्यता क्रूड सिविलाइजेशन हो गया, सभ्यता पूरा जो है इस प्रकार से हो गया कि उन्होंने जो पाश्चात्य सभ्यता दिया, जो मॉडर्नाइजेशन दिया या शहरीकरण जो हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, इसके वजह से हमारा जो भी इतना जो समस्या है ये पूरा मॉडर्न सिस्टम के अनुसार है, उसके वजह से हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते। अभी देखिए हम बचपन से हम देखिए कितने हेयर स्टाइल हमने बदला होगा, नहीं कभी संतुष्ट हो पाए कोई, कितने प्रकार के जीन्स है, कितने प्रकार टी शर्ट है, कितना अभी कोई भी देखिए किसी प्रकार का डिजाइन कर रहे हैं अलग अलग प्रकार से। अभी मोबाइल देखेंगे इतने फीचर्स देके उसका थोड़ा सा चेंज करेंगे, किसी का स्क्रीन बड़ा करेंगे, कलर चेंज करेंगे, मतलब बहुत सारे चेंजेस करके देना चाहते हैं। वो कुछ दिन संतुष्ट रहेगा, वो फिर उसके बाद उसको कुछ नया डिजाइन चाहिए ना, उसी के साथ चल रहा। गाड़ी का डिजाइन देख लीजिए, आपका कपड़े का डिजाइन देख लीजिए, जूते का डिजाइन देख लीजिए, कोई भी चीज थोड़ा सा चेंजेस करके संतुष्ट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। संतुष्ट नहीं हो सकते, कोई भी वस्तु संतुष्ट नहीं हो सकता व्यक्ति। वो श्रीमद भागवतम में जब प्रहलाद वामन अवतार में वो बताया भगवान ने, जब वामन अवतार में भगवान आए थे बलिमकर महाराज से, तीन स्टेप्स का जमीन मांगा, तीन पग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, तीन स्टेप्स, तीन पग है ना। तो बलि महाराज बोलते हैं, अरे तुम तो पागल ब्राह्मण जैसे लग रहे हो, मेरे पास तीनों लोक है, भू भुवर स्वा, स्वर्ग लोक तक तीनों लोक है, तुम्हें चाहे तो एक राज्य दे सकता हूं, क्या मांग रहे हो तीन पग का जमीन। तब भगवान जो है बोलते हैं, जिसका इंद्रिय उसके नियंत्रण में नहीं है ये तीनों लोकों में, उसके लिए ये तीनों लोकों में ऐसा कोई भी वस्तु का सृष्टि नहीं हुआ जो मिलने के बाद वो संतुष्ट हो सकता है। मतलब हमारा पूर्ण रूप से भौतिक रूप से संतुष्ट करने के लिए जो भी वस्तु का सृष्टि तीनों लोकों में नहीं हुआ है, मगर हम किसके लिए प्रयास कर रहे हैं, किसी ना किसी रूप से हम कोई भौतिक वस्तु से संतुष्ट होने का प्रयास कर सकते हैं, वो इम्पॉसिबल है। अब एक नया मॉडल लेंगे उसके पहले दिन उससे मिलने वाला संतुष्टि बहुत ज्यादा रहेगा, ये मॉडल वो फीचर सब कुछ देखेंगे, फिर दूसरे दिन से उसका जो संतुष्टि कम हो जाएगा, कुछ दिन के बाद उससे कोई विशेष संतुष्टि मिलने वाला नहीं है। आप गाड़ी खरीद लिए, बड़ा बंगलो खरीद लिए, इवन शादी करके बीवी को भी लाइए, नहीं कोई संतुष्टि नहीं, कुछ ही दिन में आप सभी, मतलब भौतिक रूप से कोई वस्तु का सृष्टि नहीं हुआ है। उसी के लिए उनके लिए प्रयास करना ये व्यर्थ है। उसी के लिए भक्ति विनोद ठाकुर बार बार भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज करके उस समय थे, उनको बोलते थे गौर सुंदर, मतलब चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को अपने पुत्र के रूप में इस बौद्धिक जगत में भेजा है दो कारण के वजह से, एक है हरिनाम संकीर्तन के लिए, दूसरा है दैवी वर्णाश्रम को पुनस्थापित करने के लिए। ऐसा वेरी ऑफन बार बार बोलते थे उनको। उसके बाद ये सभी चीज भक्ति सिद्धांत वैभव में महाराज लिखते हैं अलग अलग जगह पे। दूसरी जगह पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या कह रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर है कौन, ये कमला मंजरी है, श्रीमती राधा रानी का एक नित्य सखी है, उन्होंने मुझे आदेश दिया दैवी वर्णाश्रम को पुनस्थापन करना है, तो मुझे उनका आदेश को पालन करना ही होगा, ऐसा उनका स्टेटमेंट है। इसका मतलब आचार्यों का किस प्रकार का उनका आलोचना रहता है, किस प्रकार से लोगों को बचाया जाए, क्योंकि मॉडर्न इसके हिसाब से हमारा जीवन को डालना चाहते हैं। तो कल आप मंगल आरती अटेंड करना है नहीं करना है आपके हाथ में नहीं है, आपके कंपनी के हाथ में है, वो डिसाइड करेंगे आपको कि कल मंगल आरती में अटेंड कर सकते हो नहीं कर सकते, क्योंकि कल का वर्क क्या है, आज क्या वर्क है, कहां जाना है, क्या है, वो सभी के हिसाब से उनके हाथ में है। किस प्रकार से भक्ति की प्रगति हो सकता है? इम्पॉसिबल है। उसी के लिए गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये पूरा एक इंस्टीट्यूशनलाइज फ्रॉड है। मतलब इसको हिंदी में अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे तो क्या है, एक व्यवस्थित रूप से धोखाधड़ी करना। तो ये धोखाधड़ी का हम भाग बन गए हैं। जिस प्रकार से अभी रेमंड्स का कपड़े बहुत अच्छा पहनेगा, टाई सूट पहनेगा तो परफेक्ट मैन जैसा हम सभी लोगों को यकीन करा दिया नहीं ना भौतिक जगत ने। अभी भी आपको ऐसे लगता है ना परफेक्ट मैन, मतलब कोई कपड़े पहन के, अभी धोती कुर्ता अभी नहीं है, अभी प्रोसेस चेंज हो रहा है। आपका माइंड का पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है धीरे धीरे कि हमारा वास्तविक क्या है जीवन। मगर अभी सभी लोगों को एश्योरेंस दिला दिया भौतिक जगत ने, इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से सूट बूट पहनेगा, वही परफेक्ट मैन है। उस प्रकार से धोखाधड़ी का हम भाग बन गए हैं और वही हमारा जीवन का लक्ष्य बना के उसी तरह से चल रहे हैं। एक किसी के पास गाड़ी होगा, बंगलो होगा, अच्छे सुंदर बीवी होगा, यही जीवन परफेक्शन समझते हैं। मतलब ये भक्ति का जीवन पूरा उल्टा है। हम सभी लोग आगे प्रगति करना चाहते हैं, नहीं हम पीछे जाना चाहते हैं। सभी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, हम तो अभी कुछ तो 25-30 साल पुराने तक पहुंच गए। हम लोग, हमारा टारगेट तो 5000 साल तक पुराना जाने का, जो भी हमारा आचार्य व्यवहार जो भी है पूरा हमें 5000 साल तक पीछे तक ले जाना है। तो उसका प्रयास है और जितना पीछे जाएंगे उतना संतुष्ट होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप देखिए आपके पास जो भी वस्तु आज के डेट में है, गैजेट्स है, बहुत सारे वस्तु, कपड़े हैं, गाड़ी है, बाइक है, इतने सारी वस्तु आपके पिताजी के पास नहीं होता होगा, नहीं, और आपके दादाजी के पास उतना भी नहीं होता होगा, स्कूटर साइकिल कुछ भी होगा उनके पास। मगर वास्तविक रूप में भौतिक रूप से देखेंगे कौन संतुष्ट ज्यादा है, संतुष्ट कौन संतुष्ट ज्यादा है आपको लगता है? आप लोग संतुष्ट है या जिनके पास बहुत कम फैसिलिटीज था, आपके दादा परदादी, वो लोग संतुष्ट थे, आपको क्या लगता है क्यों संतुष्ट है? इसके ऊपर हमें चर्चा करना चाहिए, नहीं इतने फैसिलिटीज नहीं है तब भी वो लोग संतुष्ट कैसे थे? कितना सरल हमारा जीवन होगा। कल गुरु महाराज लेक्चर में यही बोल रहे थे, जितना मेटीरियली एडवांस्ड होगा उतना असंतुष्टि होगी उसकी। जितना ज्यादा पैसा कमाएगा, जितना ज्यादा पोजिशन में जाएगा, उतना ज्यादा वो डिससेटिस्फाइड होगा जीवन में, और ज्यादा प्राप्त करने का प्रयास करता रहेगा। इसी के लिए रैट रेस बताया गया। इसको रैट रेस क्यों है? जैसा आपके खेत में फसल होता है, चूहा बहुत बिजी हो जाता है, हर जगह पे बिल बनाना चालू कर देता है। आपका धान हो या गेहूं हो, बिल बनाता रहता है, पूरा धान को इकट्ठा करता रहता है, और किसी दिन इतना बिजी हो जाता है कहां कहां पे वो बनाया बिल समझ में नहीं आता, किसी बिल में घुसता है वहां पे कौन इंतजार करता है, पकड़ के आ जाता है। हम भी अभी ऐसे ही प्रयास है, जैसा आपको जॉब मिलेगा आप कोशिश करेंगे, हरेरा कॉलोनी में एक बंगलो चाहिए, एक फ्लैट लेंगे, फिर एमपी नगर में एक बंगलो चाहिए, ऐसा करते करते कई एक बंगलो में घुसेंगे, समय हो गया, चलो अपने को कॉल आ जाएगा, नहीं ऐसे ही सभी लोग इसी के बीच हैं। तो उसी के लिए हमारा मेन मूवमेंट है लोगों को कैसे फुल टाइम भगवान का सेवा में लगाना है, कि उसके लिए ये प्रकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार का चेतना हमारा विकसित होगा, जो भौतिक जो चेतना है आप देखेंगे शहरी जीवन किस प्रकार से हो गया, माइंड जो भी हमारा है, मन को स्थिर रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लुभाने वाली चीज है। जिस प्रकार के ड्रेस सेंस चल रहा है, जिस प्रकार के गाड़ियां हैं, बहुत सारे चीज लुभाने वाले वस्तु आपको भौतिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देने वाले हैं, और ऐसे प्रकल्प में आपको ये चीज नहीं आएगा। और भक्तों के संग में रहने का मौका ऐसे कम्युनिटी में मिलेगा, ओनली सैटरडे संडे का संग नहीं है, हमेशा भक्तों के बीच में रहने का। जब चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया है कि इस भौतिक जगत में सबसे ज्यादा दुखमय व्यवस्था क्या है, अवस्था क्या है, दुखमय अवस्था क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने बताया जो भक्तों का संग नहीं मिलना वही सबसे बड़ा दुखमय अवस्था है इस भौतिक जगत में। तो यहां पे हर समय भक्तों के बीच में रहने का मौका मिलेगा, उससे चेतना का परिवर्तन। एक्चुअली एक विषय मैं ये भी बताना चाहता हूं कि भक्ति में मैं अभी प्रारंभ अवस्था में ही हूं, बहुत उन्नत नहीं हूं, प्रारंभ अवस्था में, बहुत ही प्रारंभ अवस्था में जो भी स्थिति आज के डेट में है। यदि मैं शहर में होता, शहर में बड़ौदा में मैं जो गंभीर भक्तों के लिस्ट में था जब मैं था शहर में, गंभीर भक्तों में, क्योंकि डेली मंगल आरती अटेंड करना, सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम मंदिर में अटेंड करना, उसके बाद ही मतलब दर्शनार्थी अटेंड करना, माला वहीं पे करना, डेली पढ़ने के लिए बहुत टाइम मिलता था मेरे ऑफिस में, मैं पढ़ता था, गंभीर भक्तों के लिस्ट में था। मगर ये जो 7 साल, 7.5 साल हो गया यहां पे, तो जो चेतना का परिवर्तन हुआ, जो शहरी जो भक्ति है, शहरी शहर में रहते हुए मेरा जो चेतना का जो अवस्था है, और इतने साल भक्तों के बीच में रह के जो अवस्था अभी प्राप्त किया, वो भी प्रारंभ अवस्था है, मुझे लग रहा है कि यदि मैं शहर में होता, उतना गंभीरता के साथ भक्ति करते हुए भी ये चेतना तक पहुंचने के लिए अनेक जन्म मेरे को लगता, ऐसा लग रहा है। उसका मुख्य कारण है डेली हर रोज श्रीमद् भागवतम का भक्तों के मुख से श्रवण करना, हर रोज उसका जो प्रभाव सबसे ज्यादा है। दूसरा है हर रोज संकीर्तन में भाग लेना। एक्चुअली हमारा मूवमेंट क्या है, ओनली कीर्तन नहीं है, भगवान का नाम कीर्तन करना, जप करना, ओनली अकेला नहीं, संकीर्तन। जब संघ में, कलयुग में सबसे ज्यादा बल क्या है, संघ में बल है। जब संघ में सभी लोग मिलकर भगवान का जब गुणगान गाते हैं, उसका बल सबसे ज्यादा है, उससे चेतना का परिवर्तन सबसे ज्यादा होगा। उसी के लिए नाचो गाओ भक्त संग, चैतन्य महाप्रभु ने बताया, भक्तों के संग में नाचो गाओ, तो उसका जो सेकंड जो परिवर्तन आया है सबसे ज्यादा, कीर्तन में भाग लेने का और सभी मंदिर के प्रोग्राम अटेंड करने का। तो तीसरा है भक्तों के संग में, जब भक्तों के संग में रहेंगे तो हमारा स्वामी का जो भावना छाएगा। अभी तो सभी लोग अपने अपने घर में होंगे, स्वामी तो बनेंगे, हम तो एक्चुअली मध्वाचार्य कहते हैं उसके बारे में, जो मध्वाचार्य को जो कमेंट्री प्रभुपाद भागवतम में लिखते हैं 7वें स्कंद में, कि हमें भगवान का स्वरूप क्यों दिखता नहीं है, उसके लिए कहते हैं कि जब तक व्यक्ति स्वामी का जो भावना रहेगा, मतलब मैं कुछ ना कुछ हूं, मेरे पास कुछ ना कुछ है, तब तक भगवान का रूप नहीं दिखेगा। तो सभी अपने अपना कोई ना कोई फील्ड में कुछ तो सोच रहा है कि मेरे पास कुछ है, मैं कुछ प्रकार का स्वामी हूं, मैं कुछ प्रकार का मास्टर हूं, तभी हमें भगवान नहीं दिखते। तो ये सभी भावना जब जाएगा, भक्तों के संग में रहेंगे, यहां पर तो सभी नौकर जैसा करना चाहते हैं ना, सर्वेंट जैसा। यदि हमारा घर में कोई मेड सर्वेंट को रखना चाहते हैं, तो हम तो बहुत सारी चीज देखते हैं ना, इसका क्या है क्वालिटीज, कैसा करेगा, कैसा व्यवहार होगा, उसका सारी चीज देखते हैं। तो उसी प्रकार के भगवान का सेवा में हमें लगना है कि हमारा क्वालिटीज भगवान देखेंगे, किस प्रकार का इसका स्वभाव है। तो इतना जल्दी भगवान अपना प्रत्यक्ष सेवा में नहीं लेते हैं, जैसा हम सर्वेंट को लेंगे, बहुत सारी चीज हम छानबीन के देखेंगे, उसके बाद हम लेते हैं। तो उसी के लिए बताया है, स्पेशली कथा उपनिषद में बताया गया कि नायम आत्म प्रवचने न लभ्यो, कि बड़े बड़े प्रवचन देने से भगवान नहीं मिलते हैं, बहुना श्रुते न, बहुत सुनने के बाद भी भगवान नहीं मिलेंगे। तो बताया है कि भगवान चुनते हैं किसको प्रकट होना है, अभी इन लोगों में देखेंगे किसको मेरे को प्रकट होना है, वो चुनते हैं। तो वो चुनना किस प्रकार से होगा, किसमें पागलपन आएगा भगवान के प्रति, तभी है ना चुनते हैं। तो प्रभुपाद का एक लेक्चर है मैड आफ्टर कृष्णा, मतलब वो पागलपन एक जीवन में तो हमें लाना ही पड़ेगा, क्यों इसी जीवन में क्यों नहीं हो सकता, संभव नहीं। तो उसके लिए सुनना पड़ेगा भगवान के बारे में, ज्यादा श्रवण करेंगे डेफिनेटली वो पागलपन आएगा। नहीं तो आजकल आर्मी के लोग जो है वो युद्ध कर रहे हैं सरहद पे, वो जो माता पिता बच्चे सभी को भूल के कैसे युद्ध कर सकते हैं, उनको उतना देशभक्ति कैसा घुस गया उनके हृदय में, पहले तो नहीं थे, एक सिटीजन थे, जो 10th और प्लस 2 पास हो जाते हैं उन्हीं को मिलता है ना आर्मी के इसमें जॉब जो है फ्रंट जो भी लगते हैं, उनको क्यों इतना ज्यादा उनको भरा जाता है, उनका देशभक्ति रिलेटेड बहुत कुछ उनको सुनाया जाता है, तब वो एक्टिव हो जाते हैं, उस समय भूल जाते हैं युद्ध के लिए। तो उसी प्रकार का भगवान के बारे में ज्यादा श्रवण करने का हमें मौका मिलेगा, तब हम भक्ति में आगे प्रगति कर सकते हैं। एक मुख्य उदाहरण बताते हैं प्रभुपाद, सभी जगह पे लिखा उन्होंने, भगवद्गीता में लिखा, भागवत में लिखा, चैतन्य चरितार्थ में लिखा, और सनातन गोस्वामी अपने टीका में लिखा यही उदाहरण को, और मध्वाचार्य अपने टीका में लिखते हैं कि ये जो आकाश है, ये पूरा खुला आकाश है, वो भक्ति से तुलना करते हैं, ये खुला आकाश भक्ति जैसा है और एक भक्त जो है उसमें एक पक्षी जैसा है। तो कह रहे हैं कि पक्षी जो है, कुछ पक्षी कहां पे उड़ता है, छोटे छोटे पक्षी है, चिड़िया होगा, छोटे छोटे होगा, वो तो कम हाइट पे उड़ेगा, ज्यादा हाइट पे नहीं उड़ेगा, और उससे भी थोड़ा बड़े पक्षी है तो थोड़ा और ऊंचाई में उड़ता है, और गिद्ध जैसे होगा तो बहुत ऊंचाई पे उड़ता है। तो यहां पे क्या कह रहे हैं कि हर एक भक्त के लिए पूरा खुला मैदान है, जितना चाहे तो भगवान की सेवा कर सकते हैं, कोई लिमिटलेस है, क्योंकि भगवान अनंत है ना। अनंत को सेवा करने के लिए आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, कितना चाहिए तो वो कम ही है भगवान के लिए। तो क्यों नहीं इस लाइफ में फुल्ली। प्रहलाद महाराज का ये जो उपदेश क्या है, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जब तक इस शरीर में थोड़ा सा भी शक्ति बचा हुआ है, वो किसके लिए प्रयोग करने के लिए बोलते हैं, विष्णु को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करो। एक्चुअली हम लोगों को प्रयोजन, एक्चुअली भक्ति पूरा सिद्धांत जो है ना, तीन चीजों में निर्भर है कि अभिधेय, प्रयोजन और संबंध ज्ञान, इसी पे निर्भर। यदि किसी व्यक्ति को प्रयोजन पता लग गया तो उसका अभिधेय बदल जाएगा, मतलब जो कर रहा है ना डेली जो साधना कर रहा है वो, उसका स्थिति बदल जाएगी। यदि प्रयोजन, यदि मुझे पता है, आज रियलाइज हो गया, एक्चुअली सबसे बड़ा रियलाइजेशन एक प्रकार का आत्म साक्षात्कार क्या है, भगवान के नाम में भगवान वास करते हैं। यदि रियलाइजेशन हो गया आपको, मुश्किल है तो कैसे छोड़ सकते हैं हम नाम, भगवान का नाम अभी लिया कृष्णा, उसमें ही भगवान वास करते हैं। यदि मुझे रियलाइजेशन हो गया तो हरे कृष्ण महामंत्र में कैसे मैं इधर उधर घूमता हूं। मैं अभी 16 माला करते होंगे, कितना मुश्किल से आज 16 माला जब कितने के कंप्लीट हो गया, किसी का नहीं हुआ, ठीक है। तो 10 माला कितने लोगों का कंप्लीट हो गया, 8 माला, तो जो भी किया है उसमें कितना आप सुन पाए थे और कितने भगवान तक पहुंचा पाए थे, नहीं बहुत कम। जैसा माला पकड़ते हैं 3-4, उसके बाद अपने दुनिया में जाते हैं। पूरा भोपाल का एक चक्कर लगा दिया होगा आपने, हैं? थोड़ा सा द्वारिका का, क्योंकि माइंड हमेशा पास्ट टेंस में रहेगा या फ्यूचर टेंस में रहेगा, वर्तमान प्रेजेंट टेंस में कभी नहीं रहता है। वो माइंड को पकड़ने वाला ही मंत्र है एक्चुअली। जिन चीजों में रमन कर रहा है ना माइंड, जो भोग वस्तुओं में, उसको खींच के, एक्चुअली बताया गया है, साइंटिस्ट बोलते हैं कि एक आदमी का जो मन है, जो सोचता है हर रोज जो भी वस्तु सोचता है, उसमें एवरी थर्ड थॉट, मतलब हर तीसरा जो विचार है एक आदमी का एक स्त्री के बारे में, इसका मतलब माइंड कहां का घूम रहा है ना, गंदे गंदे जगह में घूम रहा है, उसको खींचने वाला मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र है। और जिस दिन हमें ये साक्षात्कार हो गया, ये नाम में ही भगवान वास कर रहे हैं, तो हम तो नाम नहीं छोड़ सकते हैं। एक्चुअली नाम ही मुख्य है। यदि कोई शुद्ध नाम ले लिया, अपराध युक्त नाम ले लिया, ये जो 10 नाम अपराध बताया है उसमें 10वां नाम अपराध सबसे बड़ा बताया गया है, मतलब इनअटेंटिव चैंटिंग। और हमारे आचार्य बताते हैं जब तक इसका ध्यान नहीं है माला करते वक्त, उसका तो पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम कभी नहीं मिल सकता है। किसके लिए टारगेट कर रहे हैं एक्चुअली, प्रभुपाद बताते हैं जीवन किसके लिए मिला है, क्लियरली सोचिए ये सेंटेंस क्या प्रभुपाद बताते हैं, बहुत ही इंस्पायरिंग है मेरे लिए। प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जीवन मिला है वो ओनली भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, देयर इज नो अदर पर्पस। यदि हम इसको रियलाइज कर लेते हैं, इस जीवन ओनली भगवान का संबंध स्थापन करना और उनका प्रेम प्राप्त करना, वो यदि समझ लेते हैं, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे जीवन का, मतलब 24 घंटा है हर रोज, उसको हर समय भगवान का कैसे संतुष्ट दे सकता हूं उसका प्रयास करेंगे। ये प्रयास करना और पहुंचाना, एक्चुअल में वो करना, एक ज्ञान हो गया, पहुंचाना में पता है, और रियली आप पहुंचा रहे भगवान तक, आपका जो डेली जो किया हुआ साधना भगवान तक पहुंच रहा है, वो आपका मुख्य रूप से ये है कि वो विज्ञान है, एक ज्ञान है, एक विज्ञान है, रियली आप पहुंचा पा रहे हैं भगवान तक। जो भी माला जपते हैं, भगवान का नाम जपना, वो अपराध युक्त अपराध मुक्त जपना, वो दैट इज अल्टीमेट गोल है। तो उसके लिए ऐसा वातावरण में बहुत एंग्जाइटी नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने दिया हुआ सिस्टम है ना। भगवान जिस प्रकार के जीवन यापन करना है पूरा शास्त्र में बताया है किस प्रकार के जीवन यापन करना है, मगर भौतिक जगत में हम लोग भगवान का जो दिया हुआ सिस्टम को थोड़ा सा तोड़ मोड़ के अपने हिसाब से करना चाहते हैं। थोड़ा पंखा लगाएंगे, घर अच्छा सा बनाएंगे, थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, उसकी वजह से हम लोग असंतुष्ट हैं। जब अपने आप को भगवान के सिस्टम में डाल देंगे तो बहुत ज्यादा संतुष्ट हो जाएंगे, जल्दी संतुष्ट हो जाएंगे। यहाँ पे 19 परिवार है, एक एक परिवार से मिलिए यहाँ पे आने के बाद उनका संतुष्टि भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। क्योंकि हमारा जो संतुष्टि है दो प्रकार का, एक भौतिक है दूसरा आध्यात्मिक है। भौतिक यदि हमारा भगवान के जो भौतिक वर्णाश्रम व्यवस्था ये भौतिक है, ये कोई स्पिरिचुअली आपको ज्यादा नहीं है, तो भौतिक रूप से भी आप संतुष्ट होना चाहते हैं तब भी अपना जीवन वर्णाश्रम के हिसाब से डालना पड़ेगा। जो भी वृत्ति स्वभाव के अनुसार कार्य करना, वो भगवान ने जिस प्रकार से बताया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्वभाव, किसने किस प्रकार का अपना अपना जीवन यापन किस प्रकार से करना है भगवान ने बता दिया। मगर हमने सिस्टम चेंज कर दिया, 200 साल 250 साल पहले से सिस्टम चेंज कर दिया, उसके वजह से इतना असंतुष्टि है। कितना आगे प्रगति करना चाहते हैं उतना ज्यादा असंतुष्टि प्राप्त करते हैं। दूसरा जो स्पिरिचुअल ब्लिस है वो उन्नत भक्तों के लिए वो भी नहीं चाहिए। भगवान को सेवा करने से जो मिलने वाला जो सुख है वो भी नहीं भोगते हैं जो उन्नत भक्त है। मगर अभी हम उन्नत नहीं है तब भी हमारे जो इंद्रियों को जो सुख मिलता है, जो आध्यात्मिक सुख है, वो किस पे निर्भर है? हम कितना भगवान को संतुष्ट कर पा रहे हैं हमारे इंद्रियों से, उस पर निर्भर है हमारा जो संतुष्टि। उसी के लिए जो यदि कोई पायलट का ट्रेनिंग कोर्स लेते हैं ना, उसके लिए कुछ घंटे फ्लाइट उड़ाना पड़ता है, उसके बाद एक लाइसेंस मिलता है, डोमेस्टिक पायलट लाइसेंस मिलता है, मतलब छोटा 2 सीटर एरोप्लेन होता है तो उसको उड़ाएगा कुछ घंटे, उसको लाइसेंस मिलेगा ताकि डोमेस्टिक मतलब घरेलू विमान उड़ाने के लिए, मतलब भोपाल से इंदौर जा सकता है, कहीं मुंबई जा सकता है, दिल्ली जा सकता है, ऐसा पायलट मिल, ऐसा कुछ घंटे उड़ाने के बाद उसको इंटरनेशनल पायलट लाइसेंस, मतलब उसके बाद दुबई लंदन कहीं अमेरिका ले जा सकता है। मतलब इस पे ये भौतिक रूप से है, उसको अपग्रेडेशन कैसे मिल रहा है, उसको प्रमोशन कैसे मिल रहा है कि कितना समय उसके इंद्रिय ये फ्लाइट को उड़ाने में लगाया, उसके परफेक्शन आया। तो ऐसे ही हमारे जो भौतिक इंद्रिय जितना समय, एक तो कितना क्वालिटेटिवली भगवान की सेवा में लगाते हैं उतना ज्यादा शुद्धिकरण होता है इसमें इंद्रियों में, और ज्यादा रियलाइजेशन होगा, तो उसके लिए परफेक्ट व्यवस्था है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा लुभाने वाला वस्तु नहीं है कि हम लोगों को उनके बारे में सोचने के बहुत ज्यादा करता है, तो बहुत सरल है भक्ति में आगे प्रगति करने के। तो गुरु महाराज ये चाहते हैं, सभी लोग महाराज बोल रहे थे, वन ऑफ माय मिशन इज टू डिस्ट्रॉय माय डिसाइपल्स मटेरियल करियर। उनका एक मिशन है कि उनके जो शिष्यों का जो भौतिक जो करियर समझ रहे हैं ना, ये तो इंजीनियर डॉक्टर, उसको बर्बाद करना, उनका एक क्लियरली बोला महाराज। तो उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, हमने बर्बाद कर चुके हैं, मगर आपका भी बर्बाद करना हमारा लक्ष्य है, तो उसी के लिए इसी प्रकार का प्रयास है। इसको समझ लिया तो बहुत बड़ा चीज है, ये समझना बहुत कठिन है। असली करियर क्या है समझना बहुत, उसी के लिए प्रहलाद नते विदुम स्वार्थ गतिम ही विष्णु, नहीं समझ रहे हैं कोई असली जो जीवन का ये है, असली स्वार्थ है, सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, भगवान विष्णु को संतुष्ट करना, तो वो नहीं समझ रहे हैं। तो उसी के लिए हमें प्रयास होना चाहिए इस प्रकार से कि एक जन्म में एक बार ट्राई करूं मैं पूरा फुल टाइम भगवान के सेवा। ये जरूरी नहीं कि आपको ये कपड़े पहनना है, फुल टाइम ब्रह्मचारी बनना, बच्चा जो बनेंगे तो बहुत अच्छा है, बहुत संभव नहीं है, बहुत अनेक जन्मों का साधना के बाद ये मौका मिलेगा, या अभी इतने जन्म में हमले गृहस्थ जीवन लगेंगे, अगले जीवन में मिले ऐसा मौका भी, बहुत अच्छा है, कोई टेंशन नहीं। इनके पास कितना वजन होता है, बहुत कम नहीं, ये गृहस्थ के बाद कितना वजन होगा, उसके लिए बहुत अच्छे उदाहरण बता रहे थे महाराज, और उनके किताब में भी लिखा है, लास्ट टाइम भी मैंने बताया कि ये हनुमान पोद्दार जो गीता प्रेस के जो चेयरमैन था, उन्होंने फाउंडर, उनका आर्टिकल बहुत पहले सज्जन तोशानी इनके जो गौड़ी पत्रिका में छपा था, उसमें दो गांव थे, एक गांव वाले हमेशा दुखी थे लोग, और दूसरे गांव वाले हमेशा संतुष्ट, और बीच में एक नदी बहती थी। ये जो गांव में दुखी वाले दुखी हैं, सभी के पीठ पे हमेशा एक बहुत बड़ा बोरी होता था, उसमें बड़े बड़े पत्थर लेके चलते थे हमेशा, और इतना उठाते थे वो हमेशा झुके रहते थे, मतलब इतना वजन हो गया उनके पास। तो उनको हमेशा बोलते थे, अरे भाई क्यों इतना वजन उठाते हो, आ जाओ ना इधर, देखो इधर देखो, सभी लोग कितना संतुष्ट है, देखो 18 परिवार कैसा है संतुष्ट, देखो आओ यहां पे ट्राई करो। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिन के बाद समझ में आया उन लोगों को, अरे कुछ तो है भाई उधर, सभी लोग संतुष्ट है, सभी के चेहरे में बहुत संतुष्ट है, हमें उतरना चाहिए। तो उतरने के लिए बोला तो बोले कि अरे कैसे उतर सकते हैं, इसके लिए बोरी उतारना पड़ेगा नीचे, बोरी नीचे रखना पड़ेगा, पूरे पत्थरों से भरा हुआ, देखो ये कैसे मैं पत्थर छोड़ सकता हूं। तो उतरने के लिए तो पत्थर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो डूब जाएगा। नहीं तो सभी के भौतिक जो लोग हैं इसी प्रकार का पत्थर उठा रहे हैं, एक छोटा गाड़ी है तो बड़ा गाड़ी लेके पीछे घूम रहे हैं, नहीं वजन बहुत, सोफा चाहिए, एक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, वो ये इतना भारी। एक ब्रह्मचारी के जीवन में क्या होगा, एक ज्यादा वो एक थाली होगा, एक लैपटॉप होगा, दो तीन किताब होंगे, ये बहुत कम, बहुत आसान है जीवन। नहीं तो गृहस्थ बनना बहुत बड़ा भारी चीज है, मगर यहां पे आएंगे तो उतना वजन छोड़ने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, यहां पे कोई सरल जीवन है, उतना वजन लेके चलने की जरूरत नहीं। तो उसी के लिए सरल जीवन अपनाएंगे, उसके लिए जो प्रयास करना है, अभी शहरी जीवन मतलब बहुत सारे अननेसेसिटीज को मेंटेन करना, आप शहर में रहोगे अलग अलग प्रकार के चप्पल चाहिए। महाराज बोल रहे थे, मैं किसी घर में गया था डिवोटी घर में, उनका शू रैक देखा, अलग अलग प्रकार के चप्पल, रहने वाले चार लोग हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल कैजुअल, बहुत सारे वेराइटीज, क्या जरूरत, फॉर्म में रहो एक चप्पल आपको 8 महीने 10 महीने चलेगा, कोई जरूरत नहीं। और अंदर जाएंगे तो अलग अलग मशीन, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, वो है ये है, और साथ ही साथ एक और मशीन, एक्सरसाइज करने वाले मशीन, क्या जरूरत है, ये सभी चीज हाथ से करो, एक्सरसाइज करने की मशीन जरूरत नहीं। ये नहीं है लोगों के, हर रोज सुबह वॉकिंग के लिए जाएंगे, जॉगिंग के लिए जाएंगे, जिम बहुत मेहनत करेंगे वहां पे, और घर में कुछ काम नहीं करना चाहेंगे, ये बुद्धिहीनता है। और घर में सारे कपड़े वपड़े धो लो, वही एक्सरसाइज पूरा बॉडी का सूरज इतना हम आगे प्रगति करने सोच रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं शहर में रह के, क्या खाएंगे हम लोग, जो भी केमिकल से उगाया हुआ खाना खा रहे हैं, जो यूरिया डीएपी का ट्रांसफॉर्मेशन, केमिकल का ट्रांसफॉर्मेशन, अभी देखिए हम लोग जो खाते हैं वो नेचुरल चीज खाते हैं ना, गेहूं आट, ये जो भी रोटी चपाती दाल सब्जी, नेचुरल चीज, मगर उनको क्या दे रहे हैं भाई, उनको जो ग्रो होने के लिए क्या दे रहे हैं, केमिकल्स दे रहे हैं। नहीं आप तो केमिकल्स खाओ मगर हमें नेचुरल चीज बना के दे दो, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं। उनको तो यूरिया दे रहे हैं 46% उसमें नाइट्रोजन है, तो डीएपी देते हैं उसमें फॉस्फरस है, और ऐसे पोटैश जिंक ऐसा बहुत सारे केमिकल्स उसको देते हैं, वो आर्टिफिशियली ग्रो हो जाता है, उसका बी आ जाता है, हम लोग उसको खा के, और ऐसे वेजिटेबल्स है बहुत सारे पेस्टिसाइड्स लगाना पड़ता है तभी आपका बहुत सारे वेजिटेबल्स आते हैं, तो उसी को खा रहे हैं, क्या प्रगति है आपका। हवा पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड से भरा हुआ है पूरा शहर, जो भी एक पेट्रोल डीजल गाड़ियां होते हैं, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, उससे बहुत ही जहरीला गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक एचसी बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ये बहुत ज्यादा जहरीला है। कितने गाड़ियों का प्रदूषण जा रहा है और वो कहां पे जा रहा है। और तीसरा है पानी, पानी कहां शुद्ध है, पूरा जो भी पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं वही जमीन में जा रहा है, वही पानी पी रहे हैं। उसी के लिए आजकल जितना हमारे डॉक्टर्स के पास जाने का ये सारी क्यों बढ़ रहा है, हमारा इम्यूनिटी डाउन हो रहा है, पूरा इस प्रकार का प्रदूषण है। तो उसी के लिए वापस हमारा ट्रेडिशनल लाइफ को रिवाइव करना पड़ेगा, और हमारे बच्चों को, आगे आपके होने वाले बच्चों को, ये सभी को बचाना चाहते हैं, कॉन्शियसनेस क्या है वहां पे। और गूगल कहता है कि इंटरनेट किस काम के यूज हो रहा है, अभी 8 साल 10 साल पहले का रिपोर्ट है, गूगल कहता है कि 70% या 80% ओनली पोर्नोग्राफी वॉच करने के लिए यूज होता है इंटरनेट का प्रयोग, देखिए। और सबसे ज्यादा कौन पोर्नोग्राफी वॉच करते हैं, पहले नंबर में आता है पाकिस्तान, दूसरे नंबर में इंडिया आ रहा है। तो सभी लोगों को इजीली अवेलेबल हो गया ना, और तरीके अभी बहुत सारे पाइपलाइन में हैं, वो आप हमारे शरीर का ईच पार्ट को संतुष्ट करने के लिए पूरा प्रयास चल रहा है। वो वेस्टर्न कंट्रीज में पहले प्रैक्टिस होते हैं, वहां पे ट्रायल होता है, फिर धीरे धीरे इंडिया में आता है, शहरों में आता है, फिर गांव तक पहुंचता है, ऐसे ही है। तो पूरा प्रयास, अभी क्या क्या नहीं बन रहा है, अभी मोबाइल्स का क्या क्या लेटेस्ट फीचर्स हमें डाल रहे हैं कि कुछ भी काम नहीं करें। ऐसा भी आ गया ना कि मोबाइल कोई वीडियो देख रहा है कोई व्यक्ति, अभी कई साइड में देखेगा तो वीडियो वही पे पॉज हो जाएगा, नहीं पता है नहीं पता है, ऐसा भी मोड़। मतलब क्या इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए क्या लोगों का चल रहा है, बड़ा टीम जो है R&D में डेली काम कर रहे हैं इनका, और ज्यादा मतलब एक्चुअली प्रॉपर क्या सेंटेंस यूज किया पता क्या है, इन्वेंटिंग न्यू वेज ऑफ सफरिंग। क्या कह रहे हैं वर्ड समझ आ रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं कि हमारे संतुष्ट करने के लिए सभी प्रयास चल रहा है, मगर कह रहे हैं न्यू वेज टू फाइंडिंग सफरिंग, सफरिंग के लिए ये सारी प्रयोग चल रहा है, सभी इन्वेंशन से भी चल रहा है, वो हम लोग नहीं समझ पा रहे। तो उसी के लिए ये फ्रॉड से बचने के लिए हमें ये प्रकल्प है, प्रभुपाद चाहते थे इस प्रकार का, जो धीरे धीरे सभी का चेतना जो कृष्णा केंद्रित होगा, सभी का जो भी एक्चुअली ये जो भौतिक जगत का जो डिजाइन हुआ है ना स्पेशली, और हमारा मनुष्य का जो बॉडी का जो डिजाइन, मन का जो डिजाइन हुआ है भगवान को भूलने के लिए, किस प्रकार से व्यक्ति भगवान को भूल सकता है उसके लिए मेटेरियल वर्ल्ड का डिजाइन इसी स्पेशली हुआ है, कैसे व्यक्ति भूल सकता है इसको भगवान को। तो इसके लिए गोकुल चंद्र प्रभु जो है बहुत अच्छा उदाहरण बताते हैं कि अभी आपको, आप सभी कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके फादर पैसे भेजते होंगे, अभी अर्निंग स्टार्ट कुछ ही लोगों का हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, तो कभी हम भी उसी स्टेज में थे। यदि मुझे कोई फिल्म देखना है मेरे फ्रेंड के साथ, तो मेरे पिताजी से मांगूंगा पैसे दीजिए मेरे को, फ्रेंड्स के साथ एक मूवी देखना है, तो पिताजी पैसे दे देंगे, जाके मूवी देखेंगे, एंजॉय करेंगे फ्रेंड्स के साथ। उस समय जब वॉच करते हो मेरे पिताजी मेरे साथ में बैठेंगे तो मेरे एंजॉय कर सकता हूं क्या, मेरे फ्रेंड्स के साथ एंजॉय नहीं कर सकता हूं ना पिताजी के साथ में। उसी के लिए भगवान जब इस प्रकार से हमने किया मुझे चाहिए एंजॉय करना है, तो भगवान एक सिस्टम बना दिया ताकि उसमें से भगवान तो साइड हो गए, अभी भगवान यहां पर कैसे एंजॉय कर सकता है, वो चार दीवार में एक स्त्री के साथ भोग करना है, वहां भगवान प्रेजेंट है, कैसे एंजॉय कर सकता, नहीं कर सकता, भगवान अपने आप को छुपा लिया, अपने आप को एंजॉय करो। तो हर जगह पे हम लोग इसी प्रकार से ये धोखाधड़ी का भाग बन रहे हैं, भगवान को भूलने के लिए व्यवस्था है, पूरा व्यवस्था इस प्रकार से डिजाइन हुआ है, तो उसी में जा रहे हैं। तो उसी के लिए वर्णाश्रम का मुख्य ध्येय है किस प्रकार से भगवान को हर समय याद कर सकते हैं, वो सिस्टम लाने के लिए ये डिजाइन है पूरा। हर जगह पे जाएंगे सभी लोग भक्त मिलेंगे, कहीं ना कहीं कीर्तन चलेगा, भगवान का कथा चलेगा, या वहां पे अर्चना का प्रोसेस चल रहा हो, कहीं ना कहीं आपको भगवान का वापस याद दिलाने के लिए ये सारी चीज बनाया गया है, वो वर्णाश्रम है। तो इसमें बचने का संभावना है। तो शहरी जीवन में यदि कोई टेम्पल का फुल टाइम सेवा कर रहा है तो उसका कुछ तो चांसेस है, नहीं तो कोई संभावना नहीं, वहां पे चेतना पूरा खराब होने वाला ही माहौल है, उसमें तो कोई बच नहीं सकता। उसी के लिए ये सिस्टम्स बहुत जरूरी है, उसके लिए प्रभुपाद ने बहुत जानकारी दिया है और गुरु महाराज उसको वापस दिखाना चाहिए। एक्चुअली मैंने भी पहले भागवतम पढ़ा, भगवदगीता पढ़ा, सब चीज है, बहुत जगह वर्णाश्रम के बारे में, वर्णाश्रम पालन करना ही होगा, ऐसा स्टेटमेंट है प्रभुपाद का कृष्णा बुक में, हर एक व्यक्ति को वर्णाश्रम पालन करना ही होगा, मगर पढ़ लेते थे, हमें कोई दिखाने वाला चाहिए, वो सभी साथ बोल रहे थे गुरु महाराज आके दिखाने, देखो प्रभुपाद का क्या विजन है, क्या चाहते थे। उसी के लिए प्रभुपाद बोलते थे दिस इज अवर नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद एक जगह पे बोला अभी तो फॉलोअर्स बहुत बढ़ गए हैं, अभी तो हमें मिल्क को बॉइल करना होगा, मिल्क को बॉइल करेंगे क्या होगा, क्रीम निकलेगा। तो उसी के लिए अभी फॉलोअर्स बहुत बढ़ रहे हैं, बट देर इज नथिंग टू फॉलो हो गया, नहीं फॉलोअर्स बढ़े हैं बहुत और फॉलो करने के लिए कुछ ही नहीं, इसको उनका इधर हो गया, अरे खाओ इधर उधर खाओ क्या दिक्कत है, भगवान का नाम थोड़ा स्मरण कर लो खा लो, हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज चले, कॉम्प्रोमाइज थोड़ी भक्ति होता है, कोई भक्ति इस प्रकार से नहीं होता है, सिंसियरिटी गंभीरता भगवान देखते हैं, तपस्या देखते हैं, कौन किस प्रकार का तपस्या कर रहा है। तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है, फ्यूचर में कभी सोच सकते हैं ऐसा फुल टाइम भगवान का सेवा के लिए, गृहस्थ जीवन भी यहाँ पे संभव है, कोई ना कोई एक ऑक्यूपेशन, अपना बॉडी मेंटेन करना, फैमिली मेंटेन करना आसान और संतुष्ट हो सकते हैं। नहीं तो शहरी जीवन में बहुत डिफिकल्ट व्यवस्था है। हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न है, किसी प्रकार का संदेह है, कुछ भी है तो पूछ सकते हैं।
यस प्रभु। कई बार जब हम शहरी जीवन के बारे में बात करते हैं शहर में भक्तों से, तो उनका कहना है कि हम शहर में अगर सारे लोग शहर से अगर फार्म की ओर जाएंगे तो फिर वो तो अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर हम शहर में रहें तो हम प्रचार करेंगे। भक्त ऐसा कहते हैं।
और प्रचार करने के लिए ब्रह्मचारी है। इवन ब्रह्मचारी इसको भी प्रभुपाद ने बोला, आप भी फार्म पे रहो, प्रचार के लिए शहर में जाओ, ऐसे भी प्रभुपाद के स्टेटमेंट्स हैं। तो प्रचार के लिए लोग अलग है। आपको बहुत बड़ा यदि गुरु का आदेश है, आप शहर में रहो, प्रचार करो, जो भी गुरु को आपने लिया तो गुरु के पास जाने का। ऐसा मैंने नंदग्राम गया, वहां पे तो सभी लोग बोल रहे फार्म जाओ, शहर छोड़ो। आपका क्या राय है? गुरु से पूछना चाहिए, तब बताएंगे उनका क्या जो भी आदेश है वो पालन करने होगा। सभी लोगों का अलग अलग अटैचमेंट्स है, उनको नहीं छोड़ना चाहते, तो उसके लिए इस प्रकार का एक्सक्यूज देना, बहाना देना, ये एक्चुअली इवन जो प्रचार करना है, प्रचार का अल्टीमेट सार क्या है? सार तो ये नहीं है कि जो शहरी जीवन किस प्रकार का है। जब भी हम जॉब करते थे, एक छोटा सा शिका रखते थे, छोटा सा, और जब भी हम प्रोग्राम संडे में आए हैं तो हमें शिका तो दिखना चाहिए सभी को कि कुछ उन्नत भक्त है, प्रगति कर रहा है, शिका दिख रहा है। जब ऑफिस में जाते हैं तो गायब हो जाना चाहिए, किसी को दिखना नहीं चाहिए, किसी कोलेग को नहीं दिखना चाहिए। ऐसा किस प्रकार का भक्ति? यदि हम पैंट शर्ट के साथ पहन के हम भगवत नाम नहीं जा सकते। 58-60 साल के बाद मेरे को रिटायरमेंट होगा, तब मैं धोती कुर्ता में आऊंगा, ये पहले से शुरुआत से ये सिम्टम है एक मनुष्य होने के लिए, मनुष्य जैसे दिखने के लिए। तो हमें ये सभी सभ्यता छोड़ना पड़ेगा। ये चेतना पे बहुत प्रभाव लाता है। आप इस प्रकार से रहिए, आपके थॉट प्रोसेस किस प्रकार से रहेगा। एक पैंट शर्ट पहनेंगे आपको किसी को अट्रैक्ट करने के लिए स्वभाव बन जाता है। तो उसी के लिए पूरा परिवर्तन चाहिए, हमें ये सिस्टम से गुजरना ही होगा एक फुल्ली। उसी के लिए प्रभुपाद बोलते हैं कंप्लीट ओवरऑलिंग ऑफ सोसाइटी जरूरत है, वो वर्णाश्रम से पॉसिबल है। उनको कन्विंस करना पड़ेगा। किस प्रकार से आपके बच्चों को बचा सकते हैं? बच्चों को आपको वहां पे शहर का जीवन में आपको स्कूल भेजना ही होगा। वहां जाएगा तो बहुत सारे पोस्टर्स देखना ही पड़ेगा। आप कोई भी प्रोग्राम में जाएंगे तो बहुत सारे बिलबोर्ड देख के तो आएंगे ना, अलग अलग चित्र तो आपके माइंड में चलता ही रहेगा। तो उसी के लिए वो शहरी वातावरण बिल्कुल अनुकूल नहीं है। जो भक्ति के लिए जो मुख्य जो है उसमें अनुकूल से संकल्प, भक्ति के लिए जो भी अनुकूल है वो बिल्कुल हमें ग्रहण करना चाहिए। तो शहर में जो प्रचार करने के लिए बहुत लोग हैं, तब भी आपको संदेह है तो जो भी गुरु को एक्सेप्ट किया बोलिए, गुरु महाराज ऐसा बोल रहे हैं शहर जाना। गुरु महाराज कल ही बोले थे, मैं कोई भी आके मेरे पास आके बोलता है मैं शहर छोड़ के, जॉब छोड़ के मैं फार्म को, वो मैं बहुत संतुष्ट हूँ सर। मैंने तुरंत महाराज बोला, महाराज जो आप इस प्रकार से बोल रहे हैं ना उसका वीडियो चाहिए मुझे, ताकि लोगों को सभी को मैं भेज सकूं। तो सभी ने बोला महाराज तो हर जगह पे बोल रहे हैं ये चीज, ये समझने नहीं पा रहे लोग। तो महाराज कितने वीडियो आपको मैं बताऊं, महाराज क्लियरली बोल रहे हैं, क्यों मेरे डिसेबल्स मेरा ये जो मैसेज समझ नहीं पा रहे? क्यों स्लॉटर हाउस को भेज रहे हैं आप उनके बच्चों को, क्यों नहीं समझ पा रहे? तो ये इंपॉर्टेंट है, गुरु इसी के लिए है, सभी चीज को काटने वाला। अभी कोई मेरे को फुंसी बोलते हैं या कोई फोड़ा कुछ हुआ, तो डॉक्टर बोलते हैं उसको काटना ही पड़ेगा, तो मुझे अलाउ करना पड़ेगा ना, काटो इसको, चाकू वाकू या लोबी एनेस्थीसिया लगाओ। मगर सभी लोग बचना चाहते हैं, अभी वो काटने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। गुरु का काम ही ये काटना सभी का, तो हमें अलाउ करना पड़ेगा, तभी वो कर पाएंगे ना, या ऑपरेशन कर पाएंगे हमारा। सभी सर्जरी भी डॉक्टर वो भी ऑपरेट करेंगे, पूरा ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे हमारे, तो वो तो सर्जन नहीं है तब भी कर देंगे। तो हमें अलाउ करना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत ज्यादा श्रवण करना पड़ेगा प्रभुपाद का। तभी हम एक्सक्यूज थे ऐसा तो नर्तक और सभी लोग बहुत प्रचार कर सकते थे शहर में रहके, यहां भी प्रचार है। यदि मैं खेती करके दिखा रहा हूं कि अरे भाई विकल्प है शहर का जीवन में आपको रह के इस प्रकार का धक्का में रह के ये करने की जरूरत नहीं है, आप सरल में 5-6 घंटे दिन में काम करो, जो भी जरूरत है सभी उत्पन्न हो जाएगी। ये प्रचार है, प्रचार करने के लिए यहाँ पे सीट पे बैठ के बहुत लोगों को प्रचार देने के लिए आचरण से प्रचार करना है। यहाँ पे एक गुरुदास प्रभु है, बच्चों को सिखा रहे हैं अलग अलग, वो आचरण से बता रहे हैं इस प्रकार से आचरण होना चाहिए। ये भी प्रचार है, ये भी प्रचार है एक्चुअली। और कोई प्रश्न?
आजकल तो स्टूडेंट्स के मतलब और सिटी कल्चर में आजकल लोन कल्चर आ रहा है, हर किसी के पास लोन है, तो और जैसे तो अभी ये तो खासकर मोस्ट प्रोमिनेंट अभी समस्या फेस कर रहे हैं सिटी में, जो भी लोग कुछ करना चाहते हैं इस पे आप कुछ।
भागवतम के 12वें स्कंद में बताया गया है कि आगे जीवन कैसा होगा, कलयुग के बारे में वर्णन है, बताया कि कर पीड़िता, सभी लोग कर मतलब ये जो टैक्सेस अलग अलग प्रकार के इसी प्रकार का इसमें बहुत पीड़ित हो जाएंगे। धीरे धीरे हम लोग सभी जैसा लोन्स है इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, होम लोन हो गया, स्टडीज़ के लिए लोन हो गया, गाड़ी के लिए लोन हो गया, इसी से पूरा जीवन यापन उसी को भरने में लग जाएगा। तो उसी के लिए हमारा मॉडर्न सिस्टम वोलेटाइल है, बहुत ज़्यादा तरल है, उसके हिसाब से हमारे जीवन को नहीं डालना है। सुस्थिर व्यवस्था जो है वो भगवान का जो दिया हुआ सिस्टम वो सुस्थिर है, वो सुस्थिर नहीं है, वो व्यवस्था के साथ डालेंगे तो हम हमेशा अपने आप को इसी प्रकार से ऋणी होना पड़ेगा। तो उसी के लिए वो जो मॉडर्न एजुकेशन देंगे तो उसके साथ चलेंगे। एक्चुअली कितना ज़्यादा बड़ा स्कूल है उतना ज़्यादा बड़ा वो भगवान से दूर जा रहा है, ग्लोबल अभी इंटरनेशनल स्कूल ग्लोबल स्कूल इसको तो भगवान से दूर ले जा रहे हैं और दूर ले जा रहे हैं। तो उसी के लिए उस सिस्टम के हिसाब से अपने आप डालेंगे तो क्या होगा, कंपटीशन रहेगा। अभी बगल वाले घर में मोटरसाइकिल जोड़ गाड़ी आ गए तो वो भी खरीदने के लिए प्रयास करेगा और लोन लेना चाहेगा, एक सिंगल BHK 2 BHK विस्तार है ना। एक्चुअली ये जो है हमारा जीवन में फॉरेस्ट फायर चालू हो गया, दहावाग्नि नहीं मतलब ये वो एक्सपैंड होता रहेगा, एक्सपैंड होता रहेगा। इसको तो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, वापस करना है तो ऐसा व्यवस्था गुरु के मार्गदर्शन पे ऐसा व्यवस्था में आएंगे तो वो जो अधावाग्नि है उसी के लिए पहला जो हम सुबह जो गाते हैं उसमें गुरु को किस प्रकार से दिखा है, एक बादल जैसा है। अभी यहाँ पे बरसता है बादल, ये कहाँ से पैदा हुआ, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर द्वारका के आगे वो जो अरेबियन सी में जो पैदा हो रहा है वो बादल यहाँ पे आगे बरसता है, मतलब वो उसको कितना करुणा है, गुरु का करुणा बताया है। वो गुरु इधर उधर 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 घूमते हैं क्यों, उपदेश देने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए। वो जो दावाग्नि को रोकते हैं, जिस प्रकार से हमारा दावाग्नि बढ़ रहा है दावा नला, तो गुरु का कर्तव्य है। तो हमारा गुरु का प्रतिनिधि होके उन्हीं का जो मैसेज को आगे देना, लोगों को ये दावाग्नि से कम करना, नहीं तो ऐसे लोन में अलग अलग टैक्सेस में GST CST LST ये सारी चीज़ों में फंस जाएंगे लोग और ज़्यादा डिफिकल्टीज में आएंगे। तो उसी के लिए मॉडर्न व्यवस्था में हमें नहीं जाना चाहिए। वो थोड़ा सा आपको लगता है कि ल्यूक्रेटिव है मगर है ही नहीं ऐसा, बहुत समस्याओं में जाएंगे हम लोग आगे जाके। अमेरिकन लोग हम देखेंगे तो उनके पास क्या चीज़ की कमी है, ब्यूटीफुल हाइट, उनका व्यू सब चीज़ है, उनका क्लाइमेट इतना गर्मी नहीं होगा, उनके लिए जो भी सब्जी फल फ्रूट्स देखेंगे अलग होगा इंडियन से, मगर उनके पास पावर ज़्यादा है, पैसा बहुत है, लग्जरियस बंगलोस है, मगर उनका रिपोर्ट आता है 72% अमेरिकन आर सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मतलब साइकियाट्रिस्ट सबसे ज़्यादा US में है, सबसे ज़्यादा ड्रग्स का कंज्यूमशन देख लीजिए US में है। क्यों इतने सारी चीज़ होते हुए वो लोग असंतुष्ट है, क्योंकि भौतिक रूप से किसी को संतुष्ट कभी भी हो ही नहीं सकता। 52% उनका डाइवर्स रेट है 8-10 साल पहले। हम तो सोचते हैं ब्यूटीफुल है वो लोग, क्यों किसी महाराज एक लेक्चर में बोल रहे थे, कोई अमेरिकन से कोई बोलेगा आप 30 साल से एक ही स्त्री के साथ कैसे रह रहे हो, इंडियंस को कोई देखेंगे अरे कैसे संभव है कि एक मतलब बीवी के साथ इतने साल रह रहे हो, वहां पे तो इतना स्थिति बहुत खराब है, जो उनका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है एक बार सर्वे किया, हमारे इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन क्यों ज्यादा है, बाद में रिपोर्ट आया क्या है, डाइवोर्स रेट ज्यादा है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक कंजम्पशन ज्यादा है हमारा, उनका रिपोर्ट, क्योंकि पहले एक ही घर में रहते थे फ्लैट में, अभी डिवोर्स हो गया, दोनों के अलग अलग घर से, ऐसे कितना डिवोर्स होते हैं, बहुत सारे, तो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन ज्यादा होगा ही ना उनका, नेचुरल है, तो वो लोग संतुष्ट नहीं है। और हम लोग भी क्या कर रहे हैं, जो मॉडर्न व्यवस्था में उनके पास जो वस्तु है वो प्राप्त करके हम संतुष्ट होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसी के अगर दौड़ में हम लोग लगे हैं तो वो लोग संतुष्ट नहीं है, तो हम लोग कैसे संतुष्ट हो सकते हैं, संतुष्टि इम्पॉसिबल है। यस प्रभु,
एक विचार आता है कि यहाँ पर जो भी गृहस्थ भक्त हैं, अधिकांश लोगों की अच्छी जॉब थी, अच्छी सैलरी थी, तो वो कुछ समय भौतिक जीवन में रहे, शहर के जीवन में रहे, कुछ उन्होंने इकट्ठा किया, उसके बाद यहाँ पर आए, तो हम भी फिर ऐसा सोच सकते हैं कि कुछ हम पहले जॉब कर लें, कुछ
मतलब उसके बाद कुछ सोने के डंडे हमें पहले पड़े हैं, और हम लोग भी सोचेंगे दूसरों को पड़ जाए फिर आ जाए, उससे बेहतर है पड़ने से पहले आ जाए ना। कुछ लोगों को तो लकड़ी के डंडे से पड़ रहे हैं, कुछ लोगों को लोहे के डंडे से पड़ रहे हैं, कुछ अच्छे जॉब वालों को तो सोने के डंडे से पड़े हैं वहां पे, तो क्या फायदा हुआ। तो हम लोग उसको कोई ज्यादा प्रमोट नहीं करते हैं, जितना जल्दी ये डंडों से पिटाई कम करना चाहते हैं उतना जल्दी आना अच्छा है। तो पिटाई सभी का चल रहा है, छोटा जॉब वाले को भी पिटाई है, बड़े जॉब वाले की पिटाई है, पिटाई का तरीका अलग है, तो क्यों पिटना चाहते हैं। तो उससे पहले बचाना है तो उनको पहले से, हमें ऐसे नहीं कहा कोई बैंक बैलेंस आपको बचाएगा, कोई चीज नहीं बचा सकता है, भगवान अकेले ये स्थिति पे लाना है, यही आश्रय तत्व यही है, मुझे बचाने वाला भगवान है। एक्चुअली ये बताया गया है मुक्ति के लिए अधिकारी कौन है, बताया गया तत्तेनुकंपा सुषुमेक्षमान, सुषुमेक्ष मतलब ईक्षा मतलब दृष्टि या आईज या आंखों से देखना, वहां पे क्या बताया सुषुमेक्ष मानो, कोई भी सु लगाते हैं उसका मीनिंग क्या हो जाता है, और क्लोजली देखने के बाद, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति समझता है जो भी भौतिक रूप से जो कष्ट प्राप्त हो रहा है उसको, वो भगवान के एक अनुकंपा एक विशेष भगवान के कृपा से मिल रहा है वो सोचता है, और मेरे कोई ना कोई पूर्व जन्म के कर्म फलानुसार मिल रहा है सोचता है, और दूसरा प्रभुपाद लिखते हैं, और वो जो मिल रहा है कष्ट दुख मिल रहा है उसको एक अपॉर्चुनिटी समझता है कि भगवान को याद करने का और उच्च मौका है। अभी मेरे को कुछ कष्ट हुआ है, समझ लीजिए आपका स्टूडेंट्स है, आपको कोई मेटेरियल डिफिकल्टी आया, समझ लीजिए किसी प्रकार का एग्जाम रिलेटेड का कोई भी चीज़ है, यदि डिफिकल्टी को आप एक अपॉर्चुनिटी समझते रहे, अभी तो भगवान को मैं बहुत ज़्यादा याद कर सकता हूँ, अभी डिफिकल्टी आ रहा है मेरे जीवन में, वो कह रहे हैं ब्रह्मा जी ये मुक्ति का अधिकारी है, मतलब जो भी मेरे जीवन में कष्ट आ रहे हैं वो भगवान को स्मरण करने के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, मौका है, अपॉर्चुनिटी, वो समझता है वो मुक्ति का अधिकारी। एक्चुअली देखेंगे तो ये चीज़ आप समझ जाएंगे तो भौतिक कष्टों से इजीली मुक्ति हो सकते हैं। हमारे साथ जो भी हो रहा है ना, ये एक निद्रा अवस्था में जो स्वप्न अवस्था में जो गुजर रहा है वैसे ही है, ये सारी चीज भौतिक कष्ट है और दुख है। कैसा, अभी आप सो रहे हैं तो एक अच्छा सा सपना आया हो, समझ लीजिए बहुत सुंदर स्त्री है, उसके साथ आप घूम रहे हो कहीं, और बच्चा, अचानक सपना टूट जाता है तो क्या लगता है, बहुत दुख होता है, अरे ये तो सपना था, ये सच होते तो कितना अच्छा लगता, ऐसा लगता है आपको। और ऐसे ही सपने में कोई बहुत ही गंदा सपना आ रहा है, आपके पीछे कुत्ता दौड़ रहा है, आप भी आगे दौड़ रहे हैं, बाई चांस सपना टूट जाता है, कितना रिलीव होता है, अरे ये तो सपना था, सही में होते तो कितना दुख होता। तो दोनों केस में क्या हो गया, सपना का ही भाग है ना, तो अभी भी आपके साथ जो भी हो रहा है वो सपना का ही भाग है, अब रियल समझ रहे हैं हम लोग, उसी की वजह से हम दुख प्राप्त कर रहे हैं। क्या है, क्या हो जाता है आपके साथ कुछ भी हो गया। एक कुलशेखर महाराज जो है, ये 12 अलवार में एक है, वो कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, मुझे मेरे कर्म अनुसार जो भी लिखा गया है सभी चीज मेरे को सफरिंग्स जो भी है ना दुख मेरे को आए अभी कोई दिक्कत नहीं, मगर आपका जो चिंतन है आपका सेवा है हमेशा मेरे को मिलते रहे, आपका नाम का जो स्मरण है हमेशा मेरे मन में चलते रहे, मगर मेरे कोई चिंता नहीं, जो भी मेरा कर्म फल के अनुसार जो भी होना है, मेरे टांग टूटना है हाथ टूटना है जो भी होना है हाँ नहीं तो कोई चिंता नहीं। एक्चुअली उतना हमारा भगवान के ऊपर समर्पित होना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ जो भी हो रहा है आपका एग्जाम फेल होना है भगवान का नोटिस में है ही नहीं, वो ये इसका ये एग्जाम फेल होगा। अभी पता नहीं बेसिक वर्कशॉप प्रोसेस है ना आपका, बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका क्या है इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस है सभी चीज है ना आपका, मैकेनिकल R&AC कितने भी मैकेनिकल है यहाँ पे, तो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट एक रुकना है आपका, भगवान के नोटिस में है ही नहीं इसका फेल होगा इसमें, तो एक्सेप्ट करना चाहिए। अरे भगवान के नोटिस में है तो क्या है चिंता है, उन्होंने अप्रूवल दे दी इसका ये फेल होगा, उसको एक्सेप्ट करना बेहतर है, तो कोई यही नहीं है उनके नोटिस में है, तो ये हमें सोचना चाहिए उनके नोटिस के बगैर कुछ भी नहीं होता, उनका नोटिस उनको अप्रूवल मिल गया तो एक्सेप्ट करो, मेरे को एक्सीडेंट होना है अरे भगवान अप्रूवल दे दिया चलो, ये एक्चुअली बहुत बड़ा ट्रेनिंग की जरूरत है इसके लिए, वो ट्रेनिंग जिसको मिल गया वो पास हो जाएगा पास में एग्जाम में, अंत नारायण स्मृति असली एग्जाम है, अंत समय नारायण की स्मृति लाना है, उसके लिए लोग तैयार कर रहे हैं, सुसाइड बॉम्बर्स को तैयार कर रहे हैं, तो उसका भाग बन गया तो भगवान के पीछे सब जीवन आप लगा सकते हैं पूरा, कुछ भी कितना अपॉर्चुनिटी उड़िए ना क्यों नहीं उड़ सकते, ऐसा नहीं कि प्रभु के अंदर ही भगवान के लिए बहुत ज्यादा आ सकती है, ऐसा नहीं है, सभी के अंदर भगवान के अंदर उतना ही परिमाण में उतना ही प्रेम है हमारा अभी, जैसा अभी यहाँ पे 18 परिवार है सभी लोग दही जमाते हैं नहीं, हर रोज दूध में दही डालते हैं तो अगले दिन दही बनी जाते हैं नहीं उसमें, और सभी दही के अंदर मक्खन है, सभी लोग जो खींचेगा जिसके अंदर शक्ति है तो सभी के अंदर वही मात्रा में, सभी को दूध एक ही जगह से आ रहा है सोर्स एक ही है, सभी लोग जमा रहे हैं और जो उसको अच्छी तरह चर्निंग करेगा तो उतनी ज्यादा मात्रा में उसका मक्खन आएगा, तो सभी के हृदय में उतना ही भक्ति है उतना ही प्रेम है, मगर कौन कितना बाहर निकाल पाता है ये साधना के स्थिति पे, जितना समय लगाना है ज्यादा समय लगाना है तो बहुत सारे तरीके बताए उसमें एक वर्णाश्रम फॉर्म फुल टाइम भगवान के साथ तो आपके हाथ में। सो क्या है कि आपके भक्ति के लिए भी आगे प्रगति करने के लिए बहुत लोग प्रार्थना करते होंगे, आप भी कोई बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते होंगे, 2-3 साल हो गया हो आप भी चाहते हैं ना, अरे जो भी नया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया 6-day सेशन प्रोग्राम अरेंज किया या आपके कॉलेज में कोई प्रोग्राम कोई ना कोई अरे भक्ति में आ जाए कोई माला जपे तो प्रार्थना भी करते हैं, ऐसे ही आपके पीछे भी प्रार्थना करने वाले होंगे भोपाल में बहुत सारे लोग, वो समझिए आपको सिंसियर बनाने के लिए बनने के लिए बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, गुरु भी बहुत प्रार्थना करते हैं, गुरु का स्थिति यही है कैसे लोग भगवान के, अभी तो सभी लोग विमुख चेतसा है मतलब अभी भगवान सामने हैं तो सामने मैं देख रहा हूं तो समुख है समुख बिल्कुल, मगर सभी लोग कुछ एंगल में मुड़े हुए हैं भगवान उधर है विमुख चेतसा है बिल्कुल बिल्कुल मुड़ने वाले तो वो तो हो गया उसका काम, अभी कुछ एंगल में हम लोग हैं तो वो थोड़ा सा और प्रयास करिए बिल्कुल समुख चेतसा हो जाएंगे बिल्कुल भगवान के आमने सामने देख सकते हैं संभव है। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।